दुनिया के सितम याद न अपनी ही वफा याद, दुनिया के सितम याद न अपनी ही वफा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद।
कई आवाजों की एक आवाज, रेख्ता पॉडकास्ट।
हाजरीन आदाब, रेख्ता पॉडकास्ट के इस बेहद खास एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। हाजरीन, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कल जिगर मुरादाबादी की यौम पैदाइश है और आज ये एपिसोड उन्हीं की नज़र है। हाजरीन, जिगर साहब रिवायती गज़ल के आखिरी बड़े शायर हैं, लेकिन उनकी शायरी के आखिरी दौर में कहीं कहीं आधुनिकता के हल्के हल्के रंग भी नज़र आने लगे थे। अगर जिगर साहब को 10 बरस की ज़िंदगी और शायरी अता हो जाती तो मुमकिन है कि जिगर साहब जदीद शायरी की बुनियाद रखने वाले शायरों में भी गिने जाते। उनका ये शेर देखिए, डर है मुझको कि मेरी हैरानी आईना उनके रूबरू ना करे, इश्क जब तक ना चुके रुस्वा आदमी काम का नहीं होता, कमाले तिश्नगी ही से बुझा लेते हैं प्यास अपनी, इसी तपते हुए सहरा को हम दरिया समझते हैं। जिगर मुरादाबादी उन चंद सोच बदलने वाले शायरों में शामिल हैं जिन्होंने 20वीं सदी में गजल के मेयार को गिरने नहीं दिया, बल्कि उसको जुबानों बयान के नए जहानों की सैर भी कराई, उसे नए लहजे और नए रंग से चमकाया भी। जिगर साहब ने उर्दू शायरी को और कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन जिगर साहब उर्दू शायरी का वो पहला नाम है जिन्हें किताब और स्टेज पर एक जैसी मकबूलियत ही नहीं महबूबियत भी हासिल हुई। मुशायरों की मकबूलियत और महबूबियत का तो ये आलम है कि उनके जैसा मकबूल शायर ना उनसे पहले हुआ और ना ही उनके बाद होगा। जिगर साहब के लिए इस दीवानगी का पहला सबब उनकी शख्सियत के वो चमकदार रंग हैं जो चुंबक की तरह उनकी तरफ खिंचने को मजबूर कर देते हैं। उनकी शख्सियत खुली किताब की तरह भी है जिसे कोई भी किसी भी वक्त पढ़ सकता है, और ठीक उसी वक्त इतनी रहस्यमयी भी है कि उनके सबसे पास रहने वाला शख्स भी इस किताब का एक लफ्ज पढ़ नहीं पाता। इस शख्सियत में जहां इतनी गहराई है कि तसव्वुफ के महके महके दायरे भी दिखाई दे जाते हैं, और वही शख्सियत शराब में डूबा हुआ एक कमजोर और बीमार जिस्म भी है जिसे देखने पर दिल दुख से भर जाता है। वो शख्सियत इतनी खुददार भी है कि बड़ी रियासत के नवाब के बुलावे पर भी शेर सुनाने नहीं जाती, और इतनी सादा भी है कि तांगे वाले की एक जरा सी गुजारिश पर पूरे रास्ते उसे गुनगुना कर कई कई गजलें सुनाने को तैयार भी हो जाती है। शख्सियत के इन अलग अलग रंगों के अलावा जिगर साहब की शायरी में जो अनोखी बात है वो है उनके यहाँ हुस्न की अजमत। जिगर साहब से पहले और उनके बाद इस सुपुर्दगी के साथ हुस्न की ऐसी तारीफ कहीं नजर नहीं आती। ये कहा जाता है जिगर साहब जबरदस्त हुस्न परस्त हैं, मगर जिगर साहब ने हुस्न को बेलिबास नहीं किया है बल्कि उसे पाकीजगी की रिदा पहनाई है। मुलायजा हो, रंगे हया है ये तेरे जोशे शबाब में, रंगे हया है ये तेरे जोशे शबाब में, या चांदनी का फूल खिला है गुलाब में, आंखों में नूर जिस्म में बनकर वो जा रहे, आंखों में नूर जिस्म में बनकर वो जा रहे, यानी हमी में रह के वो हमसे निहा रहे, रात क्या दिलकश अदाए जलवाए जानाना थी, रात क्या दिलकश अदाए जलवाए जानाना थी, शम्मा जब रुख के मुकाबिल आई खुद परवाना थी। 1890 को एक इल्मी और मजहबी घराने में पैदा होने वाले जिगर मुरादाबादी कब शराब के आदी हो गए थे उन्हें भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब उनसे कुछ पूछा जाता था तो वो बस इतना कहते, शुरू जवानी का कोई दिन था कि आंखें एक बेपनाह हुस्न की जद में आ गई और मैं मदहोशी के असीमित सफर पर निकल पड़ा। जिगर के साथ वक्त गुजारने वाले बताते हैं कि शराब की बोतल सिर्फ उस वक्त जिगर के हाथ से छूटती जब वो बेहोशी के आलम में होते, नशा उतरता और फिर पीना शुरू कर देते। जिगर ने शराब की क्वालिटी, हद और पीने के वक्त के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। वो हर वक्त हर तरह की शराब ज्यादा से ज्यादा पीना चाहते थे। उनके नजदीक शराब में पानी या किसी चीज की मिलावट एक गुनाह के बराबर थी। वो बोतल मुंह से लगाते और चाहते थे कि एक ही बार में आखिरी कतरा तक निचोड़ कर पेट में उड़ेल दे। कई कई दिन तक शराब पीने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहता। उनके लिए फिक्रमंद अहबाब जब उनसे इस मामूल में कमी करने के लिए कुछ कहते तो जिगर का सीधा सा जवाब होता, मेरा खुदा मुझे शराब पिलाता है तो आप कौन होते हैं रोकने वाले। जिगर साहब का इश्क उनकी आंखों से आगे का सफर करता हुआ बहुत कम दिखाई देता है। जिगर साहब सिर्फ देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं। उनकी आंखें हुस्न का दीदार करते हुए नहीं थकती, हुस्न की तारीफ करते हुए नहीं थकती। उनका कमाल ये है कि उन्होंने अपने ख्याल और बयान से हुस्न को इतना दीदा जेब और शाहकार बना दिया है कि हुस्न खुद अपने आप से मोहब्बत के लिए तैयार हो जाता है। देखिए तसव्वुर में ये किसके जलवाए मस्ताना आता है कि हर आंसू लिए हमराह एक पैमाना आता है। तेरी मजनू अदाई से जिगर ये खौफ आता है, तेरी मजनू अदाई से जिगर ये खौफ आता है, कहीं ऐसा न हो उनको भी आलम आशना कर दे। क्या देखेंगे हम जलवाए महबूब की हमसे, क्या देखेंगे हम जलवाए महबूब की हमसे, देखी न गई देखने वाले की नजर भी। जिगर साहब ने जहां हुस्न की तारीफ की है वहीं उन्होंने इश्क को वो ऊंचाई अता की है जिससे उसके किरदार में वो चमक पैदा हो गई है कि जिसकी रोशनी से हुस्न की आंखें भी चुंधिया गई हैं। असल में जिगर साहब के यहाँ बदन की तलाश नहीं है, उनकी नजर हुस्न की रूह तक झांक आती है और फिर अपने ख्याल के आईने में उसका अक्स बनाते हुए हुस्न की आंखों के लिए हैरानियां पैदा कर देती हैं। कहते हैं, हमने सीने से लगाया दिल ना अपना बन सका, मुस्कुरा कर तुमने देखा दिल तुम्हारा हो गया। इतने हिजाबों पर तो ये आलम है हुस्न का, क्या हाल हो जो देख लें पर्दा उठा के हम। तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं लेकिन, तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं लेकिन, जबा में आंख नहीं आंख में जबान नहीं। जिगर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, चश्मे का एक छोटा सा कारोबार रहा और वो भी चला ना चला। उनकी शराब का सारा बार उनके दोस्तों और चाहने वालों की जेब पर होता था। अगर कोई पैसे देने से इनकार करता तो जिगर कहते, तुम्हें पता है तुमसे जिगर पैसे मांग रहा है। जिगर तबीयत के बहुत शरीफ आदमी थे। उनके दोस्त फिराक गोरखपुरी बताते हैं कि जिगर ने शराब पीकर कभी कोई गिरी हुई बात नहीं कही। नशे में भी वो सिर्फ अपनी तबीयत की शराफत का सबूत दे रहे होते थे। जिगर जब बहुत पी लेते तो इतना फर्क आता कि उनकी बातें बेतरतीब हो जाती। अभी गजल और उर्दू शायरी पर बात कर रहे होते कि अचानक विषय बदलता और चश्मों के कारोबार पर बात करने लगते। जिगर साहब की शोहरत का एक बहुत बड़ा सबब दिल की परतों को सहलाता हुआ उनका तरन्नुम था, जो जिस्म के तारों में जहां झनकार पैदा करता था वहीं शेर और शायर की कैफियत भी सुनने वालों तक पूरी तरह पहुंचा देता था। उस तरन्नुम में जहां एक तरफ सरमस्ती थी, बला की नरमी थी, वहीं हद दर्जा दर्द भी था। वो दिलों को खींचने की ताकत रखता था और हजारों के हुजूम को अपने साथ बहा ले जाता था। उस तरन्नुम में एक मसीहाई की ताकत थी। मिसाल के तौर पर ये लाफानी अशार देखिए, काम आखिर जज्बाए बे इख्तियार आ ही गया, दिल कुछ इस सूरत से तड़पा उनको प्यार आ ही गया। गुलशन परस्त हूं मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निभा किए जा रहा हूं मैं। लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया, जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया।
अगर न जोरा जबीन के दिल मिया गुजरे अगर मैं जहरा जबीन के दिल मिया गुजरे तो फिर ये कैसे कटे जिंदगी कहाँ गुजरे अगर न जोहरा जबीनों के दरमिया गुजरे तो फिर ये कहे जो तेरे आरज़ू के सूखे दरमिया गुजरे कभी कभी वही लम्हे बलाए जा गुजरे जो तेरे आरिजो गेसु के दरमिया गुजरे हर एक मकाम मोहब्बत बहुत ही दिलकश था हर एक मकाम मोहब्बत बहुत ही दिलकश था मगर हम हेले मोहब्बत कसा कसा गुजरे मगर हम हेले मोहब्बत कसा कसा गुजरे हर एक मकाम मोहब्बत बहुत मेरी नजर से तेरी जुस्तजू के सबके मेरी नजर से तेरी जुस्तजू के सबके ये एक जहां ही नहीं सैकड़ों जहां गुजरे ये एक जहां ही नहीं सैकड़ों जहां गुजरे हुजूम जलवा में परवाज शौक क्या कहना हुजूम जलवा में परवाज शौक क्या कहना कि जैसे रूह सितारों के दरमिया गुजरे कि जैसे रूह सितारों के दरमिया गुजरे।
चलिए हाजरीन आपको मैं एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। तो एक शाम जिगर ने दिन ढलते ही पीना शुरू कर दिया था। वो करोलबाग में अपने दोस्त मालिक राम के घर ठहरे हुए थे। आधी रात को अचानक मालिक राम से बोले, चलो जोश के घर चलते हैं। जोश उस जमाने में करोलबाग में ही एक मकान में रहा करते थे। मालिक राम बताते हैं, हमने बहुत कहा कि जोश इस वक्त सो चुके होंगे, इतनी रात हो गई है, उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा, लेकिन जिगर ने किसी की ना मानी। आखिर सब ने आफियत इसी में महसूस की कि जैसा वो कहते हैं वैसा ही किया जाए। जाड़ों की सर्द रात में मालिक राम जिगर को लेकर निकल पड़े। महमूद उनको सहारा देते हुए चल रहे थे। जिगर चंद कदम चलते और अचानक सड़क के बीचों बीच रुक कर तकरीर शुरू कर देते। बहुत मुश्किल से 300-400 गज का फासला कोई घंटा भर में तय हुआ। जोश के दरवाजे पर पहुंचकर ही जिगर ने आवाजें लगाना शुरू कर दी और दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जोश ने जैसे ही दरवाजा खोला, जिगर लपक कर कमरे में दाखिल हुए और उनके लिहाफ में जा घुसे। जिगर के साथियों ने बहुत कोशिश की कि वो वापस चलें और जोश को सोने दें, लेकिन जिगर हर बार लिहाफ के अंदर से यही कहते, रात बहुत हो गई है, मैं यहीं सोऊंगा, तुम चले जाओ। जोश खामोश खड़े ये तमाशा देखते रहे और जिगर की शराब पर लानत भेजते रहे। शराब नोशी की इसी कसरत के चलते जिगर का घरेलू जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। उनकी शादी सूफियाना मिजाज रखने वाले शायर असगर गोंडवी की साली नसीम से हुई थी, जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। जब जिगर शराब से बाज ना आए तो दोनों का तलाक हो गया। नसीम की जुदाई ने जिगर को भावनात्मक रूप से तोड़ कर रख दिया था। पत्नी से जुदाई के बाद उनकी शराब नोशी और ज्यादा बढ़ गई थी। हफ्तों हफ्तों मदहोशी के आलम में घर से बाहर रहते। अकेलेपन को भरने के लिए तवायफों से भी रस्मों राह पैदा की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। जिगर हर वक्त यही सोचते कि नसीम दोबारा उनकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन ये इसलिए असंभव था कि जिगर से अलग होने के बाद असगर गोंडवी ने नसीम से शादी कर ली थी। कुछ अरसे बाद असगर का निधन हो गया। अब जिगर नसीम को पाने के लिए और ज्यादा बेचैन हो गए। नसीम से शादी की बात चली तो जिगर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये आन पड़ी कि नसीम ने उन्हें लिख भेजा, अगर जिगर शराब से तौबा करते हैं और कभी ना पीने का वादा करते हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। इश्क की इस मंजिल पर जिगर के लिए यह शर्त मंजूर कर लेना आसान था। गरज नसीम आ गई और शराब चली गई। इसके बाद जिगर की जिंदगी का एक दूसरा सफर शुरू हुआ, जिसकी मंजिल मस्जिदें और खानकाहें थी। जिगर साहब के बारे में गलत राय बहुत मशहूर है कि जिगर साहब सिर्फ शराब और शबाब के शायर हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि जिगर साहब के दौर में शायरी का सबसे नुमाया मौजू शबाब और शराब ही था, लेकिन इसके अलावा भी जिगर साहब की शायरी में बहुत कुछ है। उनके यहाँ इंसान की अजमत भी है और इंसानियत के लिए फिक्र भी है। यही फिक्र उनसे अलग रंग की शेर भी कहलाती है। जिगर साहब के यहाँ सिर्फ गमे जाना नहीं है, गमे दुनिया भी है। देखिए, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। फिक्रे जमील ख्वाबे परेशान है आजकल, शायर नहीं है वो जो गजल ख्वाह है आजकल। शराब ने जिगर के निजी जीवन में जितनी भी मुश्किलें पैदा की हों, लेकिन इससे उनकी शायराना शख्सियत को बहुत खुराक मिली। जब वो अपनी वजादार शख्सियत चौड़ी शेरवानी, लंबी टोपी, बेतरतीब बालों, बोसीदा ब्याज और शराब की बोतल के साथ मुशायरे के स्टेज पर आते तो श्रोता दीवानावार जिगर जिगर पुकारने लगते। मुशायरा कुछ समय के लिए दरहम बरहम हो जाता और फिर जिगर के गोया होते ही लोग पूरे ध्यान के साथ उन्हें सुनने लगते। रात भर चलने वाले मुशायरे में जिगर को कई कई बार शेर पढ़ने के लिए बुलाया जाता। कभी कभी ऐसा होता कि जिगर मदहोशी के आलम में सिर्फ एक मिसरा पढ़ते और देर तक माइक हाथ में थामे झूमते रहते। शेर के दूसरे मिसरे की आवाजें श्रोताओं की तरफ से बुलंद होने लगती। कैसी फारूकी, जो जिगर के दोस्तों में से थे, एक मुशायरे को याद करते हुए लिखते हैं, मैंने ये आलम भी देखा है कि जिगर ने ए मुहतसिब न फेंक तरन्नुम से पढ़ा और गाफिल हो गए। मिसरे का बाकी हिस्सा मुशायरा गा में बैठे लोगों ने दोहराया, मेरे मुहतसिब न फेंक। इसके बाद जिगर जरा चौंके और वालेहाना अंदाज में दूसरा मिसरा पढ़ा, जालिम शराब है अरे जालिम शराब है, और सारे मुशायरे पर शराब की मदहोशी छा गई। कई मिनट तक मुशायरे में यही शेर गूंजता रहा। जिगर को शायरी विरासत में मिली थी। उनके खानदान में कई पुश्तों से लोग शेर कहते आए थे, लेकिन जिगर ने अपने रिंदाना और आशिकाना मिजाज के इस्तेमाल से उर्दू गजल को जितना सर्वतमंद किया, उतना उनके समकालीन शायरों में कम ही लोग कर सके। गजल की विधा में इसी रचनात्मक सहयोग के लिए उन्हें रईसल मत गजलीन के लकब से नवाजा गया। जिगर का व्यक्तित्व बहुत मुतजाद सूरतों से गुथकर बना था। इश्क आशिकी और रिंदी के साथ साथ मुल्की सियासत में भी वो बहुत सक्रिय जहन और फिक्र के साथ शामिल थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसके लीडरान से उनके करीबी संबंध रहे। वो मुशायरों में शिरकत के लिए कई बार पाकिस्तान भी गए। उनके चाहने वाले बड़ी तादाद में वहाँ भी मौजूद थे। 1949 में यानी 1949 में पाकिस्तान की कई अहम सियासी शख्सियात ने जिगर से पाकिस्तान में रह जाने और वहाँ की नागरिकता इख्तियार करने के लिए इसरार किया, लेकिन जिगर का जवाब हमेशा यही होता था, मैं मरना वहीं चाहता हूँ जहाँ पैदा हुआ हूँ। जिगर की जीवनी लिखने वाले मशहूर आलोचक शारिब रदौलवी जिगर की वतन परस्ती के एक दिलचस्प वाक्य का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं, जिगर साहब 1949 में मुशायरों में शिरकत करने के लिए कराची गए हुए थे। वहाँ बहुत से लोग उनसे मिलने आए। आए हुए लोगों में एक साहब ऐसे भी थे जो मुरादाबाद के रहने वाले थे और जिगर के पाकिस्तान जाने से पहले खूब मिला करते थे। वो जितनी देर जिगर के पास बैठे रहे हिंदुस्तान की बुराई करते रहे। जिगर साहब को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया और तलख लहजे में बोले, नमक हराम तो बहुत देखे हैं लेकिन वतन हराम पहली बार देख रहा हूं। आखिरी बरसों में जिगर मुरादाबाद से गोंडा चले गए थे। वहीं 1960 में उनका निधन हुआ। जिगर के निधन पर फिराक गोरखपुरी ने लिखा था, जब तक जिगर जिंदा थे हम सब जिंदा थे, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम जिगर की मौत है और सबसे बड़ा सुकून जिगर की याद। जिगर मुरादाबादी ने शायरी को इतना आसान करके दिखाया है और शेर कहने में ऐसा कमाल हासिल किया है कि उसे देखकर सिर्फ हैरत की जा सकती है। एक आम सा शेर कहने वाला शायर ये शायरी पढ़कर इस गलतफहमी का शिकार हो सकता है कि क्या सामने की बात है, ये शेर तो मैं भी कह सकता हूँ, मगर मामला ये है कि ये सिर्फ गलतफहमी ही रहती है। ये शायरी बिलाशुबा अपने वक्त की मोहब्बत की तारीख तो है ही, मगर ये शायरी हर अहद के मोहब्बत करने वालों के दिलों में धड़कती है, हिजर में तड़पती हुई रूहों को सहलाती है, हर अहद में मोहब्बत के लिए आमादा करती है और ये भी बताती है कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू रेख्ता पॉडकास्ट। इस एपिसोड के राइटर्स हैं हुसैन अयाज और जिया जमीर। सुनते रहने के लिए इस पॉडकास्ट को फॉलो जरूर करें। ज्यादा मालूमात के लिए विजिट करें www.rekhta.org।